नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, क्रिस्टीन ग्रॉस लोह की द डायपर फ्री, बेबी शिशु देखभाल और आरंभिक शौच आदतों पर केंद्रित व्यावहारिक पेरेंटिंग गाइड है। पुस्तक का विषय एलिमिनेशन कम्युनिकेशन, यानी शिशु के पेशाब या मल त्याग की जरूरत से जुड़े संकेतों को देखना और संवेदनशील ढंग से उनका उत्तर देना है। लेखिका इसे पारंपरिक अर्थ में बहुत जल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग कराने की विधि नहीं, अब उसे बल्कि बच्चे की शारीरिक जरूरतों के साथ संवाद बनाने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। पुस्तक का उद्देश्य माता पिता को यह समझाना है कि डायपर उपयोग और बच्चे की प्राकृतिक शारीरिक जागरूकता के बीच एक लचीला संतुलन संभव है। इसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक और कभी कभी एलिमिनेशन कम्युनिकेशन अपनाने के विकल्प दिए गए हैं। इसलिए इसका दायरा केवल उन परिवारों तक सीमित नहीं रहता जो पूरी तरह डायपर मुक्त रहना चाहते हैं। व्यावहारिक सलाह, सामान्य कठिनाइयों पर चर्चा और दूसरे माता पिता के अनुभवों के माध्यम से यह पुस्तक एक गैर दबावपूर्ण, उत्तरदायी और परिवार की दिनचर्या के अनुकूल दृष्टिकोण प्रस्तावित करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एलिमिनेशन कम्युनिकेशन को शिशु की जरूरत के प्रति उत्तरदायी संवाद के रूप में समझना। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि शिशु केवल रोकर नहीं, बल्कि शरीर की मुद्रा, चेहरे के भाव, बेचैनी, समय के पैटर्न और व्यवहार में बदलाव के जरिए भी अपनी जरूरतें जताता है। एलिमिनेशन कम्युनिकेशन में देखभाल करने वाला इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करता है और बच्चे को सुरक्षित, उपयुक्त स्थान पर मल या मूत्र त्याग का अवसर देता है। इस दृष्टि में मुख्य जोर नियंत्रण, आदेश या उपलब्धि पर नहीं है। लेखिका इसे भूख, थकान या अधिक उत्तेजना के संकेत समझने जैसी दैनिक देखभाल की क्षमता से जोड़ती हैं। इसीलिए प्रक्रिया में बच्चे को शर्मिंदा करना, देर तक रोकना या दुर्घटना होने पर दंड देना शामिल नहीं है। इसका तर्क यह है कि बार बार संवेदनशील प्रतिक्रिया मिलने पर बच्चा अपनी शारीरिक अनुभूतियों के प्रति जागरूक बना रह सकता है। फिर भी पुस्तक यह दावा नहीं करती कि हर संकेत हर बार स्पष्ट होगा। शिशु का विकास, स्वास्थ्य, दिनचर्या और देखभाल करने वाले व्यक्ति की उपलब्धता अनुभव को बदलते हैं। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलिमिनेशन कम्युनिकेशन का उपयोगी अर्थ माता पिता की सतर्कता बढ़ाना है, न कि हर बार पूर्ण सफलता की अपेक्षा रखना। इस तरह पुस्तक शौच संबंधी देखभाल को संबंध और प्रतिक्रिया के व्यापक ढांचे में रखती है। दूसरा, पूर्णकालिक, अंशकालिक और कभी कभी अभ्यास का लचीला ढांचा। द डायपर फ्री बेबी की विशिष्ट विशेषता इसका तीन स्तरों वाला ढांचा है। लेखिका पूर्णकालिक अभ्यास उन परिवारों के लिए रखती हैं जो अधिकांश समय संकेतों पर प्रतिक्रिया देने और डायपर पर कम निर्भर रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अंशकालिक अभ्यास में दिन के कुछ निश्चित समय, जैसे जागने के बाद, सोने से पहले या घर पर रहने के दौरान एलिमिनेशन कम्युनिकेशन अपनाया जा सकता है। कभी कभी वाला विकल्प उन परिवारों को शामिल करता है जो केवल संकेतों को समझना शुरू करना चाहते हैं या परिस्थितियों के अनुसार प्रयास कर सकते हैं। यह विभाजन एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्या को संबोधित करता है। शिशु की देखभाल अक्सर काम, यात्रा, अन्य बच्चों, थकान और अलग अलग देखभालकर्ताओं के बीच होती है। यदि विधि को केवल सब कुछ या कुछ नहीं की शर्त पर रखा जाए तो अनेक परिवार शुरुआत से ही उसे असंभव मान सकते हैं। पुस्तक इसके विपरीत कम दबाव वाला प्रवेश बिंदु देती है। हालांकि लचीलापन तभी काम करता है जब अपेक्षाएं भी लचीली हों। अंशकालिक अभ्यास से हर समय डायपर मुक्त परिणाम की उम्मीद उचित नहीं है। इसका लाभ यह है कि परिवार अपनी क्षमता के अनुसार नियमित अवसर बना सकता है, बच्चे की लय जान सकता है और जरूरत पड़ने पर डायपर को सहायक साधन की तरह उपयोग कर सकता है। तीसरा, संकेत, समय और दिनचर्या के अवलोकन से व्यावहारिक शुरुआत। पुस्तक एलिमिनेशन कम्युनिकेशन को किसी एक सार्वभौमिक संकेत या कठोर समय सारिणी पर आधारित नहीं करती। इसके बजाय वह अवलोकन की आदत विकसित करने पर जोर देती है। माता पिता देख सकते हैं कि बच्चा जागने के बाद, दूध पीने के कुछ समय बाद, नींद से पहले या किसी विशेष गतिविधि के दौरान अक्सर कब मल या मूत्र त्यागता है। कुछ बच्चे अचानक चुप हो सकते हैं, शरीर सिकोड़ सकते हैं, करवट बदल सकते हैं या बेचैन हो सकते हैं, लेकिन इन व्यवहारों का अर्थ हर बच्चे में समान नहीं होता। इसलिए पुस्तक में संकेतों को अनुमान मानकर धीरे धीरे अपने बच्चे के पैटर्न से मिलाने का व्यावहारिक तर्क निहित है। प्रतिक्रिया के लिए एक सरल और सुरक्षित स्थान चुनना, जैसे छोटा पॉट या उपयुक्त टॉयलेट व्यवस्था, प्रक्रिया को दोहराने योग्य बनाता है। देखभालकर्ता एक स्थिर ध्वनि संकेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अवसर और क्रिया के बीच परिचय बने, लेकिन यह ध्वनि आदेश का विकल्प नहीं है। यदि बच्चा उस समय तैयार नहीं है तो प्रयास रोक देना और बाद में फिर अवसर देना गैर दबावपूर्ण रवैये का हिस्सा है। दुर्घटनाओं को जानकारी की तरह देखना इस पद्धति का उपयोगी पक्ष है। वे बताते हैं कि समय, संकेत या व्यवस्था में क्या बदलना पड़ सकता है, न कि बच्चे की असफलता। चौथा, डायपर उपयोग। शारीरिक जागरूकता और टॉयलेट स्वतंत्रता का संबंध। लेखिका पारंपरिक टॉयलेट ट्रेनिंग के उस मॉडल पर प्रश्न उठाती हैं, जिसमें लंबे समय तक डायपर के बाद एक निश्चित उम्र पर बच्चे से अचानक अलग व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। पुस्तक का तर्क है कि यदि बच्चे को शुरू से ही अपने उत्सर्जन की अनुभूति, संकेत और उपयुक्त स्थान के बीच संबंध का अनुभव मिलता रहे, तो बाद में टॉयलेट स्वतंत्रता की ओर बदलाव अधिक परिचित लग सकता है। यह विचार बच्चे की शारीरिक जागरूकता को केंद्र में रखता है। फिर भी इसे उम्र आधारित प्रतियोगिता के रूप में पढ़ना गलत होगा। लेखिका के अपने बच्चों की अपेक्षाकृत जल्दी डायपर मुक्त होने का अनुभव पुस्तक की पृष्ठभूमि है, पर प्रस्तावित पद्धति का घोषित आधार संवाद है। कोई तय समय सीमा नहीं। अलग बच्चों की गतिशीलता, पाचन, नींद, देखभाल की परिस्थितियां और स्वभाव अलग होते हैं, इसलिए वास्तविक उपयोग में सफलता को केवल सूखे कपड़ों या जल्दी टॉयलेट उपयोग से मापना सीमित दृष्टि होगी। अधिक सार्थक प्रश्न यह है कि क्या बच्चा असुविधा के समय सुना जा रहा है, क्या देखभालकर्ता शांत ढंग से अवसर दे रहा है और क्या प्रक्रिया में तनाव नहीं बढ़ रहा। इस संतुलन के कारण पुस्तक प्रारंभिक टॉयलेट आदतों पर चर्चा करते हुए भी दंड, दबाव और शक्ति संघर्ष से दूरी बनाने की कोशिश करती है। अंत में पर्यावरण, खर्च और देखभाल की सीमाओं के बीच संतुलित निर्णय। द डायपर फ्री बेबी डायपर की कम जरूरत को आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ के रूप में रखती है। कम डिस्पोजेबल डायपर का अर्थ खरीद, कचरे और कुछ हद तक संबंधित संसाधन उपयोग में कमी हो सकता है। पुस्तक डायपर रैश जैसी असुविधाओं से बचने की संभावना का भी उल्लेख करती है। हालांकि किसी बच्चे की त्वचा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए व्यक्तिगत चिकित्सकीय सलाह आवश्यक रह सकती है, इन लाभों की चर्चा उपयोगी है, क्योंकि शिशु देखभाल के निर्णय केवल विचारधारा पर नहीं, घरेलू बजट और दैनिक व्यवस्था पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन पुस्तक की पद्धति में लागत घटाने के बदले समय और ध्यान की मांग बढ़ सकती है। संकेत पहचानना, समय पर बच्चे को ले जाना, कपड़े बदलना और दूसरे देखभालकर्ताओं से समन्वय करना कुछ परिवारों के लिए थकाने वाला हो सकता है। कामकाजी माता पिता या सीमित सहायता वाले घरों में यही इसकी प्रमुख सीमा बन सकती है। पुस्तक का अंशकालिक और कभी कभी अभ्यास वाला विकल्प इस तनाव को कम करने का प्रयास है। सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष यह नहीं कि हर परिवार को तुरंत डायपर छोड़ना चाहिए, बल्कि परिवार को देखना चाहिए कि किन समयों में यह सहज है, कौन देखभालकर्ता भाग ले सकता है और क्या यह प्रयास बच्चे तथा वयस्क दोनों की भलाई के अनुकूल बना रहता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन नए माता पिता, अभिभावकों और देखभालकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगी है जो शिशु की जरूरतों को अधिक ध्यान से समझना चाहते हैं और डायपर आधारित दिनचर्या के विकल्पों के प्रति जिज्ञासु है। पर्यावरणीय कचरे, डायपर के खर्च या बच्चे के साथ उत्तरदायी संवाद में रुचि रखने वाले पाठकों को इसमें विशेष मूल्य मिल सकता है। यह उन परिवारों के लिए भी प्रासंगिक है जो पूरी तरह डायपर मुक्त होने का लक्ष्य नहीं रखते, लेकिन दिन के कुछ अवसरों पर एलिमिनेशन कम्युनिकेशन आजमाना चाहते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ संकेतों, दिनचर्या और दुर्घटनाओं को देखने का एक शांत ढंग देना है। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि यह टॉयलेट ट्रेनिंग को केवल उम्र, उपलब्धि और नियंत्रण के प्रश्न की तरह देखने के बजाय शरीर, देखभाल और संबंध के प्रश्न के रूप में पुनर्विचार करने को कहती है। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसका प्रमुख अंतर कठोर प्रतिबद्धता पर जोर न देना है। पूर्णकालिक, अंशकालिक और कभी कभी अभ्यास का विभाजन इसे अधिक यथार्थवादी बनाता है। साथ ही पाठक को इसके दावों को व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप रखना चाहिए। विधि ध्यान, निरंतरता और धैर्य मांग सकती है तथा हर बच्चे या घर के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होगी। जो पाठक गैर दंडात्मक, लचीली और व्यवहार आधारित पेरेंटिंग गाइड चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक एक स्पष्ट आरंभिक संसाधन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्रिस्टीन ग्रॉसलो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।